अल्लाह की खशियत इख्तियार करो। अगला सवाल आयत नंबर 17 में, अगेन अ रिटोरिकल क्वेश्चन, अम अमिन तुम मन फिस समाई, क्या तुम बेखौफ हो गए हो उससे जो आसमानों में है, अन युरसिला अलैकुम हासिबन, कि वो तुम पर पत्थरों वाली हवा भेजे, फसतअलमूना कैफ नज़ीर, फिर तुम्हें मालूम हो जाएगा कैसी थी मेरी वार्निंग, अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा कि मेरी वार्निंग कैसी थी। अम अमिन तुम, क्या तुम बेखौफ हो गए हो, तो वही चीज आई, मन फिस समाई, अगेन सेम चीज रिपीट हुई, मन से मुराद मेजॉरिटी उलमा के नजदीक अल्लाह ताला है। आई युरसिला अलैकुम हासिबन, हासिबन के दो माने किए जाते हैं, एक होती है ऐसी हवा जिसके अंदर बारीक 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 आग वाले पत्थर हों, जो कौमे लूत के ऊपर फेंके गए थे, कौमे लूत का इलाका जिस जगह पर था, और ये सारे वो कौमे हैं, कौमे लूत हो, कौमे साले हो, कौमे आद हो, अरब इनसे वाकिफ थे, अरब इनको जानते थे, इन अरब की हिस्ट्री में इनकी बातें इनके फोकलोर्स में भी होती थी और अरब की तारीख में भी ये वाकयात मौजूद थे। तो अल्लाह ने उनको मिसाल दी है कि तुम अपने से पहले कौमों को भूल गए हो, अल्लाह चाहे तो अल्लाह ऐसी हवा भेजे जिसमें बारीक बारीक छोटे छोटे पेबल्स हों और पेबल्स पर आग लगी हो। कौम लूत का इलाका ऐसा था जिस जगह पर नीचे आयरन और कैल्शियम के माइंस थे और फिर उससे नीचे गैस थी, पेट्रोल और गैस थी। जलजला आया, अर्थ प्लेट्स हिली, गैस की वजह से वहां पर जो थे वो इवेपोरेशन और साथ साथ उसके जो ऑयल था वो फ्यूजन हुआ, उसका कैल्शियम ऊपर उठा, उसने उस आयरन मेटल्स को हवा में उछाला, उनको आग लगी और फिर वो वापस आकर इस कौम के ऊपर गिरे। तो वो पत्थरों वाली हवा थी जिसमें आग थी। हासिबन का एक मफहूम आता है ऐसी हवा जिसमें ऐसे पेबल्स हों जिनको आग लगी हुई हो। क्या तुम ऐसी हवा से बेखौफ हो गए हो, क्या तुमसे पहली कौमों पर ऐसी हवाएं नहीं चली। दूसरा मफहूम जो हसबू का किया जाता है, ये डोमिनेंट मक्कन लैंग्वेज में हसबू कहा करते थे स्किन के नीचे किसी चीज का आ जाना जिससे स्किन उभरी उभरी से हो जाए, जिसको हम आज की जुबान में पिंपल कह सकते हैं। पिंपल, पिंपल आपकी स्किन के अंडर एक चीज होती है ना, स्किन के नीचे हल्का सा आपका कोई केमिकल सा जमा हो जाता है। तो हसबू डोमिनेंट अरबिक लैंग्वेज में, डोमिनेंट मक्कन लैंग्वेज में वो कहा करते थे बीमारी, स्किन डिजीज के लिए। तो दूसरा मफहूम ये किया गया है कि क्या तुम इससे बेखौफ हो गए हो, क़यामत तो छोड़ो, जहन्नम छोड़ो, क्या तुम इससे बेखौफ हो गए हो कि अल्लाह आसमान से तुम पर कोई बीमारी नाजिल कर दे। और बीमारियां आते हुए क्या देर लगती है। तो हासिबन में दोनों मफहूम है, अल्लाह ने जगाया है नाफरमानों को, गुम ना हो जाओ अपनी दुनिया की उन नेमतों में जो जिस रब ने दी हैं, उसका मकसद ये था कि उन नेमतों का शुक्र अदा करते और रब के फरमाबरदार बनते, उसी को भूल गए। तो रब इन दो सवालों के जरिए उनको याद करा रहा है कि अपने से पहले कौमों को भूल ना जाना, असहाबे फील को भूल ना जाना। तुम्हारे साथ ये सारे किस्से, ये सब तारीख मौजूद है। फसता अलमूना कैफ नज़ीरी, तो अनकरीब तुमको मालूम हो जाएगा कि मेरी वार्निंग कैसी थी। आप में से जो लोग इसको समझते हैं, नज़ीरी में जो रॉ की जेर है, असल में ये यहाँ एक या जो आती है, या मुतकल्लिम जिसको फर्स्ट पर्सन कहते हैं, प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का, इसका तर्जुमा है नज़ीरी का मेरी वार्निंग, मेरी वार्निंग, वो या उमिट की गई है और या को हजफ करके जेर से उसको प्रेजेंट किया गया है। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि जिस वक्त मेरी सजा आएगी तब तुमको पता चलेगा कि मेरी वार्निंग कैसी थी। नज़ीरी के दो मफहूम किए गए हैं, एक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हम पीछे पढ़ा है कि वो अल्लाह के वार्नर थे, अल्लाह की तरफ से भेजे हुए थे जो लोगों को वार्न करते थे। यानी मुफस्सरीन कहते हैं कि जब इंसानों पर, मुसलमानों पर, वो लोग जिन पर रसूल की तालीमात कान पर पड़ गई थी लेकिन वो फरमाबरदारी पर नहीं आए, तो जब उन पर कोई मुश्किल आती है, जब उनकी जिंदगी में आजमाइश आती है, जब कोई बीमारी उन पर आती है, when something hit hard in life, तो उनको रसूल की बातें याद आती हैं। फसतअलमूना कैफ नज़ीरी बता रहा है कि इन लोगों को उस वक्त याद आता है, ओ अच्छा, हमने रसूल की बात नहीं मानी थी। इसलिए आप देखें, इंसान के अंदर अल्लाह ने ये रखा है, एंड दिस गिल्ट इज ऑल्सो अ खैर। मुश्किल में अल्लाह याद आ जाए ये भी खैर है, अगर मुश्किल में भी अल्लाह ना याद आए तो फिर तो मतलब है कि दिल पर मोहर लग चुकी। मुश्किल में अल्लाह याद आता है, खैर का मामला है। जब इंसान पर मुश्किल आएगी, स्कॉलर्स कहते हैं ये आयत बता रही है फसतअलमूना कैफ नज़ीर, इंसान को मुश्किल में अल्लाह की बात याद आती है, रसूल की तालीम याद आती है। इसी तरह से नज़ीर का दूसरा मफहूम किया जाता है हुआ कलाम अल्लाह, अल्लाह का कलाम कुरान सबसे बड़ा नज़ीर है। आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, अल्लाह का कलाम तो आज भी नज़ीर के तौर पर मौजूद है। जब मुश्किल आती है इंसान सोचता है हाय शायद मैंने वो गलत काम किया था तो कहीं मुझे उसकी सजा ना मिल रही हो, फिर डर कर सदका करता है, फिर डर कर इस्तगफार करता है, फिर डर कर अल्लाह से माफ़ी मांगता है। तो ये खैर है, अगर मुश्किल में रिग्रेट आ जाए और अल्लाह का बंदा माफ़ी मांग ले तो ये अच्छी बात है। तो अल्लाह ने कह दिया कि अपने ऊपर आसमान को देख लो, अल्लाह चाहे तो बीमारी भेज दे या अल्लाह कोई हवा भेज दे, और फिर तुम जिस साआ का जिक्र करते रहते हो, जिस साआ को मानते रहते हो, फिर वो आएगी और फिर तुम्हारे पास माफी का कोई मौका नहीं आएगा। आगे फरमाया आयत नंबर 18 में, वलाकद कद्दबल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फकैफ़ काना नकीर, और यकीनन इनसे पहले भी जिस जिसने झुटलाया तो देख लो कैसा था मेरा नकीर, कैसा नुकसान हुआ मेरा इनकार करने का। दिस नकीर इज वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड, अभी बताती हूँ। वलाकद कद्दबल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, अल्लाह ताला कह रहे हैं ये जो कुरैश हैं ये कोई पहले नहीं है जो अपने रब की वार्निंग्स पर कान नहीं धर रहे। इनसे पहले भी लोग ऐसे थे जो अपने ब्याह को झुटलाते थे, जो अल्लाह की बात को झुटलाते थे। आप देखें हम इंसान भी, ये कभी कभी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात का झुटलाना ही हो जाता है ना। हम जानते हैं क्या सही है और क्या गलत है, हम जानते हैं हमने किस पर अमल करना है, हम जानते हैं हमने अच्छा इंसान कैसे बनना है, हम जानते हैं अल्लाह हमसे क्या चाहता है, फिर भी अमल के लिए कदम नहीं उठते ना। तो ये क्या होता है कि हम बाज़ औक़ात कुरान सुन रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, लेकिन जो नसीहतें उसमें आ रही होती हैं हम उस नसीहत के फ्रेम में किसी और इंसान का चेहरा प्लेस कर रहे हो। बाज़ औक़ात हम कुरान सुनते हैं और बहुत अच्छी एडवाइस सामने आती है और हमारे जहन और दिल में आता है फलाह के लिए कितनी अच्छी एडवाइस है। मुनाफिकत की बातें आएंगी, फलां के लिए तो बिल्कुल सूटेबल है, दिल दिल में कहते हैं हाँ लगती भी थी मुझे, आज प्रूफ मिल गया। इट इज ह्यूमन फितरा, सबसे पहले अपने आप को भूल जाता है इस्लाह के एंगल से। तो अल्लाह ताला ने कहा कि कोई तुम्हारा पहली दफा का ये एटीट्यूड नहीं है, तुमसे पहले लोगों का भी यही हाल था, वो भी ऐसे डिनाइल पर होते थे, वो भी ऐसे ही ठुकराते थे, वो भी ऐसे ही झूठ बोलते थे कि उनको समझ नहीं आती थी कि बात उनके लिए या किसी और के लिए है। हालांकि कुरान की एक एक आयत हर पढ़ने वाले के लिए परफेक्टली फिट करती है। जो कुरान को पढ़ना शुरू करता है कुरान उसको पढ़ना शुरू कर देता है। तो अल्लाह ने यहां वाजे कर दिया कि ये माइंडसेट जो है ये तुमसे पहले लोगों का भी था। अगर तुमसे पहले लोगों का ये माइंडसेट था कि वो वही की किताबों को अपनी नसीहत के लिए इस्तेमाल नहीं करते थे, इंसान सोचता क्या है, मैं अपने एंगल से, हम अपने एंगल से बात करें प्रैक्टिकल नोट के ऊपर, जब हम कुरान की आयतें अहकाम सुन रहे होते हैं हम कहते हैं हाँ फलां पर सूट करते हैं, एक्चुअली मेरी पोजीशन बिल्कुल यूनिक है, आई एम अ यूनिक केस, मेरे साथ अल्लाह जरा थोड़ा सा हट के मामला करेगा। क्यों? आपको सुरखाब के पर लगे हैं, आप आसमान से उतरे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। अल्लाह ने कहा पहले दौर में भी लोग यही करते थे, अपने आप को जरा एक्स्ट्रा स्पेशल समझते थे। तो जब उस वक्त के लोगों को उनके गुनाहों के ऊपर, उनके क्राइम्स के ऊपर सजा मिली तो अल्लाह की सुन्नत तो अब भी नहीं बदली। जो आज भी वो क्राइम्स करेगा कि अल्लाह का कलाम उसके सामने खुलेगा, दीन समझ आएगा, हक समझ आएगा, रसूल की तालीम उसके कान पे पड़ जाएगी, फिर भी वो इग्नोर करेगा तो फिर अल्लाह की सजा आएगी। हाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बाद ये पॉकेट्स में आएगी, अजाब इंडिविजुअल आएंगे, मुश्किलात इंडिविजुअल्स आएंगी, बीमारियां इंडिविजुअल्स पर आएंगी, आजमाइशें इंडिविजुअल्स पर आएंगी, पूरी की पूरी उम्मत को वाइप आउट नहीं कर दिया जाएगा। ये अल्लाह का वादा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। तो बिल्कुल जैसे पीछे आया था कि जब जहन्नम के सामने खड़े हुए अहले जहन्नम से फरिश्ते पूछेंगे कि तुम्हारे पास कोई नज़ीर नहीं आया था, वो कहेंगे कालू बला कद जा अना नज़ीर, हाँ आया था, बिल्कुल आया था, फकज़्ज़बना तो हमने झुटलाया। यहां पर भी यही आया है कि जो पिछले लोग थे इनका भी मसला यही था, فَكَذَّبْنَا, ہر وہ انسان, اور کس چیز کو جھٹلایا, یہ مینشن نہیں وہاں کیا تھا یہاں بھی نہیں کیا, کس کو جھٹلایا, رسول کو جھٹلایا, کتاب کو جھٹلایا, دین کو جھٹلایا, حلال حرام کو جھٹلایا, فرض کو جھٹلایا, نہیں آیا. اور میں نے آپ کو تب بھی بتایا تھا جب مینشن نہیں کیا جاتا تو ہر چیز آ جاتی ہے اس کے اندر. تو جب پہلو نے دین کو جھٹلایا, دین کی قدر نہیں کی, دین کے ساتھ میس کیا, دین میں پک اینڈ چوز کیا, تو اللہ کی سزا آئی. تو آج جو بھی یہ کام کرے گا اس کو اپنے اصلاح کے لیے سوچ لینا چاہیے, ورنہ یہ سزا تیار ہے. اللہ نے فرمایا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِي, تو تم دیکھو کہ کیسا تھا میرا خبردار کرنا, کیسا تھا میرا پلاٹ کرنا, کیسا رہا تمہارے ساتھ میرا انکار کرنا. دس از ایز اے بیوٹیفل ورڈ. نکیر کے چار میننگز ہیں اور چاروں میننگز مختلف اسکالرز نے اس آیت کے ساتھ اٹیچ کیے ہیں. اللہ کی وارننگز ہمارے لیے نکیر کیسے ہوتے ہیں. عربی زبان میں نکیر نون کاف را سے ہے. عربی میں نکیر کہتے ہیں دا بیس میننگ. نکیر کہتے ہیں رجل ذا نکر, کوئی بہت ہی اسمارٹ ایلیکٹ, بہت ہی کلیور انسان, اتنا اسمارٹ کہ جس کو استعمال کیا جاتا ہے اگینسٹ دا اینیمی, تاکہ وہ اتنی پلاٹنگ کر سکے کہ دشمن کو ہرا سکے. رجل ذا نکر, اتنا اسمارٹ سولجر جو دشمن کو ڈیسیو کر کے ختم کر سکتا ہے, یہ اس کے ایک میننگز ہیں. اتنا اسمارٹ سولجر جو دشمن کے خلاف پرفیکٹ سکیم کر سکتا ہے. دوسرے میننگز آتے ہیں نکیر میں, وہی میننگز آتے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر میں. نکیر کے دوسرے میننگز ہیں ان نون. دیکھیں منکر جو ہوتا ہے, جس کو ہم منکر کہتے ہیں, ہر منکر شروع سے شر نہیں ہوتا, اس کو سمجھ لیں. منکر کی ڈیفینیشن ہے ان نون, ان نون. اسی لیے جب ہم آج لوگوں سے کہتے ہیں دیٹ کیپ یور سیلف اوے فرام سیلیبریشنز جس کے اندر, جس کے روٹس میں پیگن کلچر ہے, تو لوگ کہتے ہیں اس میں حرج ہی کیا ہے, برتھ ڈے کرنا از منکر ان اسلام. ہو سکتا ہے اس وقت کسی خاندان کا برتھ ڈے کرنا ڈائریکٹ شر کا باعث نہ بن رہا ہو, بٹ ایوری منکر ول فائنلی لیڈ یو ٹوورڈز شر. منکر اپوزٹ ہے معروف کا. ہر وہ چیز جو اسلام میں شریعت میں نون ہے وہ معروف ہے, ہر وہ چیز جو ان نون ہے وہ منکر ہے. منکر ضروری نہیں ہے شروع سے شر ہو, لیکن منکر میں رہنا انسان کو شر کی طرف لے جاتا ہے. سمجھ آ گئی بات؟ تو منکر ہے ان نون. اسی طرح سے گدھے کی آواز کو قرآن میں کہا گیا ہے انکر الاسواتی لصوت الحمیر. کس اینگل سے کہا گیا ہے منکر؟ شر کے اینگل سے نہیں کہا گیا, اٹس ان نون. جنرلی جانوروں کی آوازیں اتنی لاؤڈ نہیں ہوتی, جنرلی اتنی ان یوژل آواز نہیں ہوتی. تو جب گدھے کی آواز کے ساتھ آپ کو انکرل اسوات ملتا ہے, اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اٹس ان یوژل ساؤنڈ. تو دو مفہوم ہو گئے, ایک ہے ایسا سولجر جو بہت کلیورلی اپنے دشمن کے لیے اگینسٹ اسکیم کر سکتا ہے, دوسرا وہ چیز جو ان نون ہے, تیسرا وہ چیز جس کو آپ کہتے ہیں ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ. نکیر کے اندر نہ کرا وہ کام جو ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ ہو. اور نہ کرا کا چوتھا مفہوم آتا ہے انکار. صحیح. اب آپ ان چاروں کو اگر فکیف کانا نکیر پر اپلائی کریں تو آپ کو پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس نے میرے خلاف اسکیم کی اس کو اندازہ نہیں ہے وہ کس کے خلاف اسکیم کر رہا ہے. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِي, جب انسانوں میں ایسے انسان ہوتے ہیں جو اتنی کلیورلی اپنے دشمن کے خلاف سکیم کر سکتے ہیں کہ اس کو ختم کر دیں, تو یہاں تو رب العزت ہے. جبکہ آپ دیکھیں جو لوگ قریش تھے یا جو آج بھی اسلام کے دشمن ہیں, وہ اسلام والوں کے خلاف سکیم کرتے ہیں یا اللہ کے خلاف سکیم کرتے ہیں؟ سامنے کون ہوتے ہیں ان کے؟ قریش نے جو سکیم کی تھی, جیسے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مرڈر کرنا چاہ رہے تھے, تو وہ اللہ کو تو نہیں مرڈر کرنا چاہ رہے تھے. کس کو مرڈر کرنا چاہ رہے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. جو وہ ٹارچر کرتے تھے تو نعوذ باللہ اللہ کو تو نہیں ٹارچر کرتے تھے, کس کو ٹارچر کرتے تھے؟ صحابہ کو ٹارچر کرتے تھے. अल्लाह के रसूल को टॉर्चर करना, अल्लाह के रसूल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना, अल्लाह के दीन पर चलने वालों को नुकसान पहुंचाना, उलमा को कत्ल करना, कुरान के इस्लाम के फॉलोअर्स की इंसल्ट करना इज इक्वल टू अल्लाह इंसल्ट। अल्लाह इसको अपनी इंसल्ट समझता है। फकई फकान नकीरी, जिन्होंने ये समझा कि वो रसूल के खिलाफ प्लॉट कर रहे हैं, वो बड़े धोखे में थे। असल में वो अल्लाह के खिलाफ प्लॉट कर रहे थे, और अगर अल्लाह ने मुकाबले में अपनी स्कीम शुरू कर दी तो फिर इनको कौन बचाएगा। इसलिए कि उन्होंने अल्लाह से दुश्मनी की है। सूरह बकरा की आयत नंबर 98 में आता है, मन काना अदुवुल्लिल्लाहि व मलाइकतिहि व रुसुलिहि व जिब्रील व मीकाल फइन्नल्लाहा अदुवुल्लिलकाफिरीन। जो लोग जिब्राइल और फरिश्तों के और रसूलों के दुश्मन हैं, असल में अल्लाह उनका दुश्मन है। अगर आप अल्लाह के दीन पर चलने की कोशिश में लगे हुए हैं, अगर आपकी जिंदगी में लोग हिंड्रेंसेस ला रहे हैं, तो आपके और मेरे लिए इसमें सबक यह है कि आपको और मुझे ज्यादा अपने तहफ्फुज के लिए स्कीम करने की जरूरत नहीं है। कौन है हमारी स्कीम करने के लिए? अल्लाह मौजूद है। दिस इज वन मीनिंग। दूसरा मीनिंग था अननोन। अल्लाह ने कुरैश को भी सुना दिया और आज के हर नाफरमान इंसान को सुना दिया, जो ये समझता है, कुरैश समझते थे आखिरत नहीं आने, इसलिए अल्लाह के रसूल से सवाल किया करते थे कि कैसे हो सकता है जब हमारी बॉडीज डीकम्पोज हो जाएंगी तो हम दोबारा उठाकर खड़े कर दिए जाएंगे। आखिरत का कॉन्सेप्ट उनका कंप्लीटली डिस्टॉर्ट हो चुका था। तो अल्लाह ने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि जो चीज तुम्हारे लिए अननोन है वो आएगी भी नहीं? बिल्कुल जैसे आज के इंसान कहते हैं, हमने इल्म हासिल नहीं करना, पता चल गया ना तो हिसाब देना पड़ेगा, कहते हैं ना। तो आपको नहीं पता चलेगा तो आप हिसाब नहीं देंगे क्या? हिसाब तो देना ही देना है, वो तो होगा ही होगा। कितना मौत से भागते हैं, मौत का जिक्र नहीं करो भाई, क्या मॉर्बिड, हर वक्त मौत की बातें करती रहती हो। चलो कोई अच्छी बातें करते हैं, वो भी देखने कहां चले। आप मौत की बातें ना करें, आप मौत को याद ना करें तो मौत आएगी नहीं, मौत तो आनी है। ये माइंडसेट इंसान समझता है कि शायद अपने आप को ला इल्म रखेगा तो बच जाएगा। अल्लाह ने कहा नहीं, अगर कुरैश आखिरत से अपने आप को दूर रखे हुए हैं और समझते हैं कि आखिरत उनके लिए अननोन है, इसका यह मतलब नहीं है कि आखिरत आएगी नहीं। फिर तीसरा मफहूम था इसके अंदर एक्सट्रीम डिफिकल्टी का। वो तमाम लोग जो मुसलमानों के लिए मुश्किलात क्रिएट करते हैं, और सुनकर और सोचकर भी दुख होता है, बासोकात अपने खानदान के लोग, अपने घर वाले, अपने रिश्तेदार, दो लोगों को या एक इंसान को जो दीन पर चलने की कोशिश में लग जाता है, उसका दामन खींच खींच कर उसको वापस घसीटते हैं, बजाय इसके कि उसको इनकरेज करें कि वो अपने अमल में आगे बढ़े। जो अमल करना शुरू करता है उसको टाइटल्स ऐसे देते हैं कि वो बेचारा परेशान हो जाता है, उसको एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं, उसका मोराल लो करते हैं, उसको कहते हैं देखना खानदान में कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा, देखना तुम्हारे बच्चों से कोई शादी नहीं करेगा, देखना तुम्हारे बच्चे और तुम खानदान से कट जाओगे। ये जब होगा तो जब अल्लाह के दीन पर चलने वालों के लिए मुश्किल क्रिएट की जाती है, एक्सट्रीम डिफिकल्टी, फकैफ काना नकीरी, जिस दिन अल्लाह ने ऐसे लोगों के लिए मुश्किल क्रिएट करना शुरू की, तब पता चलेगा फकैफ काना नकीरी, मेरा मुश्किल क्रिएट करना कैसा था। और चौथा पॉइंट, चौथा इसमें मफहूम है इनकार करने का, डिनाइल करने का। वो सब लोग जो रिलीजन की बात सुनना नहीं चाहते, जो रिलीजन्स को डिस्कस नहीं करना चाहते, जो कहते हैं दुनिया भर की डिस्कशंस हो, रिलीजन की डिस्कशन ना हो, जो रिलीजन पर अमल नहीं करना चाहते, जो कहते हैं हमारी जिंदगी जैसे चाहो जियो के मुताबिक हो, जस्ट डू इट, रिस्ट्रिक्शंस मत लगाओ, जो कांस्टेंट डिनाइल पर हैं, जिस दिन अल्लाह ने नेमतें देने से डिनाइल कर दिया, उस दिन ये कहीं के नहीं रहेंगे। जो अल्लाह का इनकार करते हैं, अल्लाह ने एक लम्हे के लिए भी अगर अपनी नेमत हटा ली, अपनी रहमत हटा ली, तो ये जिंदा नहीं रह सकेंगे। तो फकई फकाना नकीरी में ये दोनों एंगल आते हैं। तो ये दो रिटोरिकल क्वेश्चन हैं। अब उसके बाद एक आपको इसमें स्पिरिचुअल एसेंस मिल रहा है आयत नंबर 19 में, जिसमें सोचने पर मजबूर किया जा रहा है। इट्स अ स्पिरिचुअल रियालिटी एंड इट्स अ ब्यूटिफुल आयत, ब्यूटिफुल आयत। आयत नंबर 19 में है, अवलम यरौ इला तैरी फौकहुम, क्या इन्होंने अपने सर के ऊपर परिंदों को नहीं देखा? साफ फातिन, पर फैलाने वाले, वयक बिदना, और उनको समेटने वाले, कॉन्ट्रैक्ट करने वाले, मा युमसिकु हुन्ना इल्ला रहमान, रहमान के अलावा उनको थामने वाला कोई भी नहीं है। इन्नहु बिकुल्ली शैइन बसीर, और यकीनन वो हर चीज के ऊपर खूब ओवरव्यू रखने वाला है, खूब फुल व्यू रखने वाला है, खूब देखने वाला है। यहां पर आपको एक फिजिकल रियलिटी मिल रही है। काबा वालों को सुनाया जा रहा है, कुरैश को सुनाया जा रहा है, मक्का वालों को सुनाया जा रहा है, वो जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानियों में आगे बढ़ रहे थे उनको सुनाया जा रहा है। तुम्हें याद नहीं है, छोड़ो जहन्नुम को, छोड़ो जहन्नुम की कॉन्वर्सेशन को, छोड़ो कयामत को, फुगेट अबाउट जमीन का जलजला, चलो छोड़ो सिंक होल को भी छोड़ो, जरा थोड़ा सा अपनी तारीख में पीछे जाओ, सर के ऊपर देखो, परिंदे उड़ते हुए तो आज भी नजर आएंगे। क्या अल्लाह ने इन्हीं परिंदों के जरिए उन लोगों को खत्म नहीं किया, वो आर्मी जो काबा को नुकसान पहुंचाने आई थी, अब्राहा की आर्मी, वो आर्मी जिसने फिजिकली काबा की सैंटिटी को वायलेट किया था, तो अल्लाह ने परिंदों ही के जरिए पूरी फौज को तबाह कर दिया था। तो अगर आज तुम काबा की स्पिरिचुअलिटी को वायलेट करोगे और रसूल के कहने और समझाने के बावजूद बुतों को वहां से नहीं निकालोगे, तो क्या अल्लाह आज भी ऐसी कोई आर्मी तुम पर भेज नहीं सकता? हमें अपनी जिंदगी में भी सोचने की जरूरत है। दिस इज दैट पार्ट वॉज फॉर द कुरैश। हम अगर आज भी अपनी जिंदगियों में से शिर्क नहीं निकालेंगे, तो अल्लाह ताला हर शिर्क करने वाले को वार्न कर रहा है। जैसे अल्लाह ने पहले दीन की सैंटिटीज को डिस्टर्ब करने वाले, वायलेट करने वालों को खत्म किया, अल्लाह आज भी उनको खत्म कर सकता है। अपनी जिंदगी को प्योर तौहीद पर लेकर आए, मत मांगे लोगों से, मत फैलाएं लोगों के सामने हाथ, डू नॉट बी पार्ट ऑफ अ मजार, मत जाए मजारों पर। दुआए मगफरत पढ़ने किसी बुजुर्ग के लिए घर बैठकर पढ़ लीजिए, मत चढ़ाएं चादरें, मत जाकर मन्नतें मांगे वहां पर, पीर बेटा नहीं देता, पीर बख्श, पीर है और बख्शने वाला है, बख्शने वाला तो ऊपर बैठा है, ये कौन सा नया पीर पैदा हो गया जो बख्शने लग गया? अपनी तौहीद को खालिस करें, वरना अल्लाह की सजा आते हुए देर नहीं लगती। और याद रखें, अब सजा ऐसी नहीं आएगी कि पूरा शहर वाइप आउट होगा, इंडिविजुअल सजाएं आते हैं। तो मक्का वालों को वार्न किया गया। दूसरा मिसाल यहां दी गई कि परिंदे की जो तुम्हारे सर पर उड़ता है, परों को फैलाते हुए और फिर समेटता है, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। साफ फातिन पर फैलाने के लिए आता है, लेकिन अरबी में परों के लिए जनाहा आता है, जनाह का लफ्ज नहीं आ रहा है। तो साफ फातिन में दो इम्पैक्ट है, एक ऑब्वियसली परिंदे का पर फैलाना अरबी में लिया जाता है, जब बात बहुत ऑब्वियस होती है तो कभी कभी मेंशन नहीं की जाती। साफ फातिन का एक मफहूम है परिंदे का पर फैलाना, तुम अपने सर पर नहीं देखते। साफ फातिन का एक मफहूम है, साफ फातिन सफ से है, सफ बनाते हैं आप, जब आप नमाज के लिए सफ बनाते हैं तो आप एक फॉर्मेशन को फॉलो करते हैं। जो आसमान पर परिंदे उड़ते हैं, कभी शाम में ऑब्जर्व किया, असर की नमाज के बाद जब वो वापस जा रहे होते हैं, एक तो आपको अक्सर फ्लॉक में उड़ते हुए नजर आते हैं ना, आप उनको देखती रहें एक तरफ से लेकर दूसरी तरफ तक, वो फॉर्मेशन बदलते रहते हैं। गौर किया है कभी? आप गौर कीजिएगा, जरा मोबाइल फोन से हाथ छूटेगा तो सर के ऊपर नीला आसमान और परिंदे नजर आएंगे। अब आज जाकर बाग में बैठ जाइएगा, रोजा खुलने से पहले, दुआ की कबूलियत का भी बहुत अच्छा टाइम है, आज सब जाइएगा, सही है? सब घर वाले कहेंगे आज क्या सुनकर आ गई, आज सब जाइएगा, बल्कि बाग में बैठकर, टेरेस में बैठकर, खिड़की में बैठकर, जहां से आपको आसमान नजर आता है वहीं बैठकर कुरान पढ़िएगा और फिर जरा आसमान पर ऑब्जर्व कीजिएगा। दिस इज अ ब्यूटीफुल थिंग। जब परिंदे उड़ते हैं फ्लॉक्स में, तो वो आपको रोज में तो नजर आते ही हैं, बट कॉन्स्टेंटली रोज बदल रहे होते हैं, शेप्स बदल रहे होते हैं, और इतना स्मूथ बदलते हैं कि हमेशा मुझे उनको देखकर बिल्कुल वो 23 मार्च की परेड याद आती है, जैसे वो इतने अच्छे से तरीके से सोल्जर्स अपना फॉर्मेशन बदलते हैं ना। अब आपने आज सबने ऑब्जर्व करना है। तो एक मफहूम है इसके अंदर कि परिंदों का पर फैलाना और वो आसमान पर उड़ना, दूसरा है परिंदों का फॉर्मेशन अपना कॉन्स्टेंटली मॉडिफाई करते रहना। अल्लाह ने पिछली आयात में इंसान से कहा था फैलने के लिए, फम शू फी मना की बिहा, कहा था फैल जाओ जमीन में, एक्सप्लोर दिस अर्थ, گو اینڈ فائنڈ اینڈ ڈگ ریسورسز. اللہ نے یہاں مثال دی پرندوں کی, وہاں انسانوں سے کہا تھا بھائی الیہ النشور, پھیل جاؤ واپس تو میری طرف ہی آنا ہے. یہاں کیا بتایا, پرندہ پر پھیلاتا ہے لیکن اگلا پروسیس کیا ہوتا ہے, ویقبضنا, کانٹریکٹ بھی تو کرتا ہے, سمیٹ بھی تو لیتا ہے. بالکل جیسے تم اس وقت دنیا میں پھیلے ہوئے ہو, زندہ ہو, ہسل وسل میں ہو, مصروفیت میں ہو, ایک دن آئے گا کانٹریکشن, سمیٹ لیا جاؤ گے, واپس جانا ہے اس رب کی طرف. سونر اور لیٹر اللہ کی طرف واپس پہنچنا ہے, اللہ تمہیں گراب کر لے گا. یہاں پر جو آپ میں سے جو لوگ عربی جانتے ہیں, اگر کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ صاف فاتن اور یقبضنا مونس کیوں آئے ہیں, دونوں جمع مونس, تو یہ عربی کا اصول ہے جمع مونس اس طرح سے میگنیفائی کرنے کے لیے بھی سچویشن کو آتا ہے. اٹس اے ویری میگنیفائڈ ایگزامپل. اور پرندوں کی مثالیں جتنی بھی قرآن میں آئی ہیں یہ بڑی میگنیفائڈ ایگزامپلس آئی ہیں. تو اللہ نے آسمان پر فوکس کرنے کے لیے کہا. ایک اور خوبصورتی ہے, صافاتن, آپ میں سے جن کو سمجھ آتا ہے عربی زبان, از اسم, یقبضنا فعل. اسم جب کسی لفظ کے ساتھ آتا ہے یا کسی لفظ کے لیے اسم لایا جاتا ہے, اس میں کسی کام کا لانگ ٹرم ہونا ہوتا ہے. جب فعل لایا جاتا ہے کسی کام کا شارٹ ٹرم ہونا ہوتا ہے. صافاتن ہماری زندگی ہے, 50 سال کی, 60 سال کی, 70 سال کی, پھیل جاؤ جتنا پھیل سکتے ہو, گرو کرو, بلاسم کرو, اسپراؤٹ کرو, بلوم کرو, اسپرنگ آئے گی تمہارے اوپر. 70 سال کی زندگی, صاف فاتن اسم, فیل شارٹ ٹرم یقبضنا, ایک لمحہ آئے گا موت تمہیں لپیٹ دے گی, ایک لمحہ آئے گا موت تمہیں سمیٹ لے گی. پرندے جس طرح سے کانسٹنٹلی گلائڈ کرتے رہتے ہیں, اور آپ دیکھتے ہیں یقبضنا کانٹریکٹ بہت کم کرتے ہیں. تو دس از دا بیوٹی جو یہاں بتائی گئی ہے, ما یمسکوہن الا الرحمن, اللہ کے علاوہ ان کو کسی نے نہیں تھاما ہوا. یہ امساک عربی زبان میں کہتے ہیں کسی چیز کو ایسے ہولڈ کرنا کہ وہ موو نہ کر سکے, امساکن, ایسے کسی چیز کو ہولڈ کرنا کہ وہ موو نہ کر سکے. ایک بہت پیاری ایکسپلینیشن کلاسیکل اسکالر نے اس لفظ سے دی ہے, ما یمسکوہن الا الرحمن. وہ کہتے ہیں انسان کی اس پوری مثال سے, جو انسان کی حقیقت اللہ نے بتائی ہے پرندے کی مثال دے کر, انسان کی ڈیفالٹ پوزیشن زندہ رہنا نہیں ہے, موت ہے. اگر ہم زندہ ہیں تو اللہ نے ہمیں زندگی سے تھاما ہوا ہے. بالکل جیسے پرندے کی اوریجنل پوزیشن یہ نہیں ہوتی کہ وہ ہر وقت آسمان پر اڑتا رہے, ایفرٹ لگتی ہے. اگر آپ پرندے کی سائنس پڑھیں, جو اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کے اندر جس طرح سے اس کی بونز کو ایڈجسٹ کیا ہوتا ہے, بڑا ایفرٹ والا کام ہے اڑنا. اس کی نارمل ڈیفالٹ پوزیشن ہوتی ہے وہ کسی برانچ پر آ کر بیٹھ جاتا ہے, دس از اے ڈیفالٹ پوزیشن. اڑنا اس کی ڈیفالٹ پوزیشن نہیں ہے, بیٹھنا اس کی ڈیفالٹ پوزیشن ہے. اسکالرس کہتے ہیں انسانوں کو بتایا جا رہا ہے تم ہر دن موت کا مزہ چکھتے ہو جب رات میں سو جاتے ہو, پھر اللہ تمہیں امساکن, اللہ ہولڈ کراتا ہے, آؤٹ آف رحمہ تمہیں زندگی دیتا ہے. انسان کی ڈیفالٹ پوزیشن ہے کہ وہ موت میں جاتا ہے. وی آر آن کانسٹنٹ لائف سپورٹ. ایک تو مریض نظر آتا ہے آپ کو وینٹیلیٹر پہ, ہم بھی اللہ کی ایک سپورٹ, ایک طرح کے وینٹیلیٹر پر ہیں. محسوس تو کریں کتنی نعمت ہے. ہر رات جب ہم سوتے ہیں ہماری روح ہمارے ناک اور منہ سے باہر نکل جاتی ہے, بس ایک دھاگے سے جڑی رہتی ہے. اب وہ کیسا ہوتا ہے واللہ اعلم, حدیث کا مفہوم ہے. پھر جس کو نیند میں موت آنی ہوتی ہے اللہ وہ دھاگا کاٹ دیتا ہے, جس کو زندگی ملنی ہوتی ہے روح واپس آ جاتی ہے. بس یہ ہے ہماری ڈیفالٹ پوزیشن. تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں زندگی دیتا ہے. ناؤ کنیکٹ دس میننگ, الذی خلق الموت, پہلے موت آئی تھی نا, موت از یور ڈیفالٹ پوزیشن, والحیات, اور پھر اللہ تمہیں صبح میں دوبارہ زندگی دیتا ہے. اس پرندے کی مثال میں یہ امپیکٹ بھی ہے کہ جو قومیں اللہ کی فرما بردار ہوتی ہیں وہ بلندیوں پر اڑتی ہیں, اور جب قومیں نافرمان ہو جاتے ہیں تو ان کا ڈاؤن فال شروع ہو جاتا ہے. جب انسان اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے اللہ اس کو انٹلیکچوئل, اسپرچوئل, فزیکل گروتھ دیتا ہے. جب انسان اللہ کا نافرمان ہونے لگ جاتا ہے ڈپریشن, انگزائٹی, پریشانیاں, فوبیاز اس کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے. मुख्तलिफ इलनेस का शिकार हो जाता है। आगे अगला सवाल, एक और सवाल आ रहा है। अब यहां पर एक सवाल, दो सवाल और एक स्पिरिचुअल रियलिटी खत्म। अब अगला सवाल क्या आया? अगला सवाल आया, अमन हादल्लदी हुआ जुंदुल्लकुम यंसुरुकुम मिन दूनिर रहमान इनिल काफिरूना इल्ला फी गुरूर। या वो कौन सा तुम्हारा लश्कर है जो तुम्हें रहमान के मुकाबले में मदद करे, काफिर सिर्फ धोखे में है। अल्लाह का सार्केज़्म है। अल्लाह के मुकाबले में, रहमान के मुकाबले में क्या तुम्हारी कोई आर्मी है? ईद पर अल्लाह की नाफरमानी मत करना, कौन सी तुम्हारी आर्मी तुमको अल्लाह से बचाएगी? मैं इसके ऊपर कल बात करूंगी इंशाल्लाह। अर-रहमान की अर-रहमान के खिलाफ आर्मी रखना, अल्लाह को अर-रहमान मानते हुए अल्लाह की नाफरमानी करना, अल्लाह को मानना और अल्लाह की बात ना मानना, इसमें इंसान सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी को धोखे का शिकार करता है। अल्लाह ताला हमारे लिए इस फहम को गहराई में अपनी शख्सियत का हिस्सा बनाना आसान बना दे। अल्लाह हमारे अंदर से तमाम परेशानियां निकाल कर बाहर फेंक दे। अल्लाह हमारी शख्सियत के तमाम फ्लॉज और तमाम गुनाह कम्प्लीटली दूर कर दे। अल्लाह हम कमज़ोर इंसान हैं, अल्लाह हमारी मदद फरमाइए। अल्लाह हमारे लिए इस इल्म को बेहतरीन हुज्जत बना दीजिए कि यह हमारे हक में आखरत में गवाही दे। अल्लाह हमें बरकत दीजिए कि हम खैर आफियत से इस सूरत को कल मुकम्मल कर सकें। अल्लाह इस सूरत का इल्म ऐसा हमें अता कीजिए कि हम हर रात इस सूरत को पढ़ें और यह सूरत कब्र में हमारा बेहतरीन कंपेनियन बनकर आए। अल्लाह हमें इस सूरत की शिफात नसीब फरमाइए। अल्लाह हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात नसीब फरमाइए। अल्लाह हमें खात्मा बिल खैर बिल ईमान अता फरमाइए। अल्लाह तमाम बीमारों को शिफाए कुल्ली अता फरमाइए। अल्लाह रमज़ान की जो चंद रातें रह गई हैं, हमें उनमें क़याम करने की और दुआएं मांगने की तौफीक अता फरमाइए। अल्लाह जहाँ जहाँ तक ये आवाज़ और ये ऑडियो जाए, अल्लाह सब की दुआएं कबूल फरमाइए। हमारी तमाम जायज़ दुआएं कबूल फरमाइए। हमें माफ़ फरमा दीजिए, हम पर रहम फरमाइए। अल्लाहुम्मा इन्नाका अफ़ुवन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्ना। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वकीना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा अजिन्ना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिन्ना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिन्ना मिनन्नार। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैरन। कल क्लास 3 बजे से लेकर 5 बजे तक है। अस्सलामु अलैकुम।